हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा परी को इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था, उसका जो अनिष्ठान पूरा हुआ है वो विक्रांत रंधावा की मदद से पूरा हुआ है। अगर विक्रांत रंधावा वक्त रहते उस सांप का गला नहीं पकड़ता तो वो सांप तारा परी का अनुष्ठान भी भंग कर देता। अब तारा परी के दिलो दिमाग में एक जगह की छवि छप चुकी थी। अब तारा परी को केवल उसे जगह को ढूंढना था और बाकी की चुनौतियों का सामना करना था। तारा परी अनुष्ठान पूरा करने के बाद अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरी रात वो अनुष्ठान में बैठी रही थी। क्योंकि तारा परी माँ बनने वाली थी तो इसीलिए उसे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। हालांकि उसका बच्चा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत था, उसकी कमजोरी नहीं था, लेकिन एक ही सिचुएशन में बैठे होने के कारण उसे थोड़ा सा शरीर में पेन फील होने लगा था। अनुष्ठान पूरा करने के बाद तारा जैसे ही नीचे गई, उसने देखा करिश्मा जी आज फिर मुंह लटकाए हाल में बैठे हुए थे। तारा परी को समझते देर नहीं लगी कि जरूर आज फिर इनका अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था। तब तारा परी ने करिश्मा जी को एक फोटो दिखाते हुए कहा था, मॉम क्या आप बता सकती हैं ये जगह कहाँ पर है? जैसे ही करिश्मा जी ने उसे फोटो को देखा तो वो हैरान हो गई थी। वो बोली थी, बेटा तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तारा हैरान हो गई थी कि क्या करिश्मा जिस जगह के बारे में कुछ जानती है। ततारा को अपनी तरफ इस तरह से देखा हुआ देखकर बोली थी, बेटा मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तब तारा ने बात को घुमाते हुए करिश्मा जी से कहा था, वाह मॉम मैं सो रही थी और सोते हुए अचानक से ये जगह मेरे दिल और दिमाग में घूमने लगी थी। उसके बाद जैसे ही मैं सुबह उठी, मैं इस जगह को अपने चित्र में उतार लिया था और उसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए आ गई। मुझे नहीं पता ये जगह क्या है और कैसी है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपने इस जगह को देखा है। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तारा ने अनजाने में एक ऐसी जगह बना दी थी जिसके बारे में कभी भी करिश्मा जी के दिल दिमाग में ख्याल तक नहीं आया था। तब करिश्मा जी ने तारा की ओर देखते हुए कहा था, बेटा ये वो जगह है जहाँ पर जिन्नातों और काली शक्तियों में महायुद्ध हुआ था और उस महायुद्ध में आसपास के 300 गांव तबाह हो गए थे और उन गांव को एक ही मंदिर जोड़ता था जो कि शिवजी का मंदिर था। 300 गांव के लोग इस मंदिर में पूजा किया करते थे। इस मंदिर के आसपास ही काली शक्तियों और जिन्नातों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 300 गांव के साथ साथ मंदिर भी काफी हद तक तबाह हो गया था। तो ये जो चित्र तुम बनाकर लेकर आई हो, ये शिव जी का वही मंदिर है जो अभी भी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर काली पहाड़ियों के पीछे स्थित है। जैसे ही तारा ने ये सुना, वो हैरानी से करिश्मा जी की ओर देखने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। क्या वो करिश्मा जी को सारा सच बता दे? कहीं ऐसा ना हो करिश्मा जी सच जानने के बाद उसका भी सच जान ले कि आखिरकार वो इतना कड़ा अनुष्ठान कैसे पूरा कर पाई जो वो इतने सालों में नहीं कर पाई थी। और इतना ही नहीं, जिन महाराज भी उस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाए थे। तारा परी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन तभी करिश्मा जी बोल पड़ी थी, बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये जगह कैसे बना दी, जबकि तुमने तो आज तक की ये जगह देखी भी नहीं है और बल्कि इसके बारे में कुछ सुना भी नहीं होगा। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा थोड़ा सा सोचते हुए बोली थी, वह मॉम जब से जिन महाराज का वंशज मेरी कोख में आया है तब से मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आते रहते हैं। तारा पारी की बात सुनकर करिश्मा जी उसे हैरानी से देखने लगी थी और कहीं ना कहीं अब करिश्मा जी को भी लगने लगा था कि हो ना हो जरूर जिन्नातों के वंशज ने ही तारा के दिलो दिमाग में ये तस्वीर छापी होगी ताकि हम वहां जाकर अमन के पिता की खोज कर सकें। ये सब दिमाग में आते ही करिश्मा जी ने तारों को जोरों से गले लगा लिया था और बोली थी, मेरी बच्ची तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी है। अब मैं यहां इस जगह जाकर जरूर चेक करूंगी। जहां तक मुझे लगता है अमन के पिताजी मुझे यहीं मिलेंगे। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा चौंक गई और बोली थी, नहीं नहीं मॉम यहाँ पर आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी इस जगह को देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जो जगह मेरे ख्वाब में आई थी वो असल में कैसी दिखती है। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तारा को क्या कहे, क्या वो वहां आने की उसे परमिशन दे दे। अगर वो वहां जाने की परमिशन दे देती है तो क्या इससे तारा और उसके बच्चे पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना। करिश्मा जी अभी इसी कश्मकश थी कि तभी तारा परी ने करिश्मा जी का हाथ पकड़ लिया था और बोली थी, मॉम आपको ज्यादा कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, मैं बस आपके साथ चलना चाहती हूँ। तारा के इस तरह के इसरार पर करिश्मा जी मना नहीं कर पाई थी और बोली थी, ठीक है बेटा, और वैसे भी अमन यहाँ नहीं है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें लेकर जाना ही होगा और हम आज ही उस जगह के लिए निकलेंगे। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, तारा परी मुस्कुरा दी थी और उसने करिश्मा जी को गले से लगा लिया था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा और काली शक्तियों के गुरु के पहले रक्षक यानी के काले नाग का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कहीं न कहीं काला नाग बार बार ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि क्या एक मामूली इंसान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मुझ जैसे महाशक्तिशाली नाग का सामना कर सके। विक्रांत रंधावा से युद्ध करने के बाद उसे इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि उसके सामने को खड़ा हुआ इंसान कोई आम इंसान नहीं था और ये कौन था इसके बारे में उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। विक्रांत रंधावा की माँ ने अपने तप के जरिए वाले शक्तियों के गुरु से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त काली शक्तियों के गुरु का अनुष्ठान पूरा होने के बाद अपनी आंखें खोल चुके थे और वो किसी भी तरह के ताप या अनुष्ठान में नहीं थे, इसीलिए विक्रांत रंधावा की माँ काली शक्तियों के गुरु तक नहीं पहुँच पाई थी। अब विक्रांत रंधावा की माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस काले नाग पर अपने मंत्र विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा काला नाग एकदम पत्थर का सा बन गया था। उसकी माँ ने अपनी काली शक्तियों के द्वारा उस काले नाग को पत्थर का बना दिया था। हालांकि वो उसके गुरु से बात करके उन दोनों का झगड़ा खत्म करवाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया था। उस काले नाग को उसे मजबूरी में पत्थर का बनाना पड़ा था, क्योंकि अगर वो उसे पत्थर का नहीं बनाती तो उन दोनों में युद्ध ऐसे ही चलता रहता और वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर हारते हुए या किसी परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित अब किसी न किसी तरह से उस डायन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। वो मल्लिका के साथ मिलकर कुछ न कुछ प्लान बनाना चाहता था ताकि उस डायन से अपना पीछा छुड़ा सके, इसलिए उसने मल्लिका को अपने कमरे में रख रखा था, जबकि वो डायन उसका लाल कमरे में इंतजार कर रही थी क्योंकि एक बार और वो अमित के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना चाहती थी।
अगर वो लगातार 7 दिनों तक अमित के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाती है तो अमित के शरीर की जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब के सब ऑटोमेटिक उसके अंदर चली जाएंगी और उसके बाद अमित की खुद ब खुद मौत हो जाएगी और वो डायन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, इसीलिए वो अमित के पीछे यहाँ तक चली आई थी। अमित अभी तक उसके कमरे में नहीं आया था, जिसकी वजह से उसे कहीं न कहीं लगने लगा था कि कहीं अमित को उस पर शक तो नहीं हो गया, लेकिन फिर वो जोरों से खुद ही हंसने लगी थी। और क्योंकि अब वो खुद को अमित से भी ज्यादा ताकतवर समझने लगी थी, उसे इतना तो यकीन था कि उसने अमित की आधी शक्तियाँ तो ले ही ली हैं और इन शक्तियों के साथ वो अमित का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती थी, तो इसीलिए इसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। पूरे 2 घंटे तक अमित का इंतजार करने के बाद जब अमित उसके कमरे में नहीं आया, तब वो अमित को देखने के लिए खुद ब खुद उसके कमरे की ओर चल पड़ी थी और जैसे ही उसने अमित का दरवाज़ा बाहर से खटखटाया, अमित देखकर हैरान हो गया था कि ज़रूर वही आई, आखिर वो काली शक्तियों का मालिक था, छोटी मोटी बातों का अंदाज़ा लगाना उसके लिए आम बात थी। तब उसने मल्लिका को हुक्म दिया था कि वो कहीं न कहीं छुप जाए, वो उसके नज़रों में न आए। मल्लिका को जल्दी से कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो अपने काले साए के रूप में होकर उसी कमरे में छुप गई थी। वही जल्दी ही वो लड़की अमित के कमरे में चली गई थी और जब उस डायन ने अमित को देखा, अमित बेड पर आराम से सोया हुआ था, एक्चुअली वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। अमित को इस तरह से सोया हुआ देखकर वो डायन मुस्कुराती हुई उसके पास जाकर बैठ गई थी। उसने नाम मात्र को ही कपड़े पहन रखे थे। वो अमित को हर तरह से रिझाना चाहती थी ताकि अमित उसके साथ उसको ऐसा कम कपड़ों में देखकर अपने होश को बैठे हुए एक बार फिर से उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बना ले। उसने अमित के सर पर हाथ रखा था। उसके सर पर हाथ रखते ही अमित को ऐसा हुआ जैसे कि एक बार फिर उसकी शक्तियाँ उससे दूर जा रही हों, इसीलिए उसने घबराकर जल्दी से अपनी आँखें खोल ली थी और उसकी ओर देखने लगा था। उसने एक झटके से उसे डायन का हाथ झटक दिया था जो उस डायन को कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अमित को घूर कर देखने लगा था। हालांकि उसने अपना असली रूप अमित को नहीं दिखाया था, अभी तक वो सिर्फ गुड्डी के मासूम चेहरे को ही अमित को दिखाते हुए आई थी। अमित ने जैसे ही गुड्डी को अपने पास पास देखा तो वो एक बार फिर उसका दिल उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा था, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया था। प्रेमचित्रित प्रयाग। दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तारा परी की कहानी को प्यार देने के लिए आप सबका ढेर सारा धन्यवाद।